Gopi Janavala Prabhupada స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదకి, శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద దేవికి, శ్రీ శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమానికి, శ్రీ శ్రీ పంచతత్వకి, సమవే గౌర భక్త వృందకి నితాయ గౌర ప్రేమానందే హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరతమాన్, దేవీం సరస్వతీం వ్యాసాం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 2 అధ్యాయ 5 శ్లోక సంఖ్య 13. బహు ఛోటా లిఖా హై, దిఖాయే ఆప్కో. విలజ్జమానయాయశ స్థాతుమిక్షాపథేముయా విమోహితా వికథ్యంతే మమాహమితి దుర్ధియా.
ృందావనేశ్వరి వృషభానం సుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే.
वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्त वृंद हरे राम 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 हरे हरे। विलज्जमाने यशस्तातुमिक्षा पथे मया विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहमिति दुर्धिया। भगवान की भ्रामी का शक्ति माया अपनी स्थिति से शर्माए होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तात्पर्य, भगवान की दुर्जय शक्तिशाली छलने वाली शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है संपूर्ण जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वो इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वही से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीव का मुख्य लक्षण है कि वो व्यर्थ की बकवास करता है, यह वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है। ये मैं हूँ, ये मेरा है। ईश्वरीय सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं या उन लोगों को जो पहले से ठगीनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं वे ठगीनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होते, अतएव वे इस भ्रांत धारणा से कि यह मैं हूँ ये मेरा है मुक्त रहते हैं। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं न अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट शब्दों में की गई है। हरे कृष्णा। तो हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम की महानता का वर्णन पहले स्कंद में आता है जिसमें कहा गया है कृष्णे सुधाम उपगते धर्म ज्ञाना देवी सह, कि कृष्णा अपने धाम वापस चले जाते हैं द्वापर के अंत में। और तो फिर कौन से युग की शुरुआत होती है? कलयुग की शुरुआत होती है। तो कृष्णा सूर्य के समान है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, तो कृष्ण सूर्य के भांति है और सूर्य जब निकल जाता है ऐसे नहीं कि सूर्य ने जन्म ले लिया और सूर्य मर रहा है, नहीं, सूर्य प्रकट होता है या फिर उदित होता है और अस्त होता है। तो उसी प्रकार से भगवान की तुलना इस जगत से जाने जो वापस जाते हैं अपने धाम निजी धाम, तो उसकी तुलना भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। तो भगवान जब इस धराधाम को छोड़ते हैं तो ये जो जगत है अंधकार से पूर्ण हो जाता है। कलयुग की शुरुआत कब होती है? जिस क्षण कृष्ण इस पृथ्वी लोक को छोड़ते हैं उसी क्षण कलयुग की शुरुआत होती है। तो फिर भगवान सूर्य के समान है, भगवान ये जगत को छोड़कर चले गए तो फिर अंधकार ही अंधकार। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञाना दिवी सह, कि भगवान अपने साथ धर्म ज्ञान नीति सारी चीजें वापस ले जाते हैं। नष्ट कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्को अधुनो उदित, तो फिर भगवान इस अंधकारमय जगत में एक महत्वपूर्ण चीज छोड़ के जाते हैं। जो व्यक्ति इस कलयुग के प्रभाव से अपनी रक्षा करना चाहता है या अंधकार जगत में विचरण करना है तो उसको टॉर्च लाइट की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कलयुग में भगवान अपने आप को श्रीमद् भागवतम के रूप में यहां छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम की महिमा में वर्णन आता है कि यदि व्यक्ति को इस दुर्लंघ्य
कलयुग के प्रभाव को लांघना है, हाँ, या माया को लांघना है, तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी जो माया है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है। तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति जो भौतिक प्रकृति के रूप में जानी जाती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से जो बनी हुई है, और अंतरंगा शक्ति क्या है? भगवान की योग माया है, आध्यात्मिक जगत। और इन दोनों के बीच में, तट में, तटस्थ शक्ति हम जीव हैं, जीवात्मा है। कभी भौतिक शक्ति में आनंद अनुभव करता है, कभी आध्यात्मिक शक्ति में आनंद अनुभव करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी दुर्लभ शक्ति माया है, इतनी प्रभावशाली है कि इसको पार कर पाना एक प्रकार से असंभव है। मम माया दुरत्या, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि एक चीज से संभव है इसको पार करना, और वो क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम धरन्तिते, केवल मेरे शरण ग्रहण करने मात्र से इस प्रभावशाली माया को पार किया जा सकता है, उसके साथ फाइट नहीं कर सकते हम। लेकिन माया का मतलब क्या है? जनरली लोगों को, लोग सोचते हैं, जैसे हम कई लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो संसारिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक व्यक्ति है, बच्चे हैं, नौकरी है, धंधा है, बिजनेस है, ये सब चीजें हैं, ये सब माया में हम मायिक जगत में रह रहे हैं। लेकिन माया क्या है? माया वो चीज है, कोई भी चीज हमारे लिए माया हो सकती है। जो चीज हमें कृष्ण का स्मरण विस्मरण कराती है, कोई भी चीज जो हमें कृष्ण को दूर ले, कृष्ण से दूर ले जाती है, कृष्ण का विस्मरण को हमारे जीवन में बढ़ाती है, वो हमारे लिए क्या है? माया है। और वो चीज हमें दुख दिए बिना रह नहीं सकती, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी पत्नी हो सकती है, हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद के अर्ली डेज में वर्णन आता है, हाँ, उनके जो पिताजी थे गौर मोहन डे, तो उनका जब कॉलेज के दिनों में शादी तय हो गई, तो देखा शादी हुई भी, तो उन्होंने देखा उनके मन में विचार आया कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर नहीं है, मुझे इससे और एक पत्नी और एक लड़की से विवाह करना चाहिए जो बहुत सुंदर है। वो आइडेंटिफाई की हुई थी, एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों को बता रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मैं अपनी इस पत्नी से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि वो इतनी सौंदर्यवान नहीं है, रूपवान नहीं है, मैं किसी और युवती से विवाह करना चाहता हूं जो सुंदर है। तो उनके पिता ने कहा कि देखो, तुम सुंदर पत्नी से विवाह करोगे, सुंदर युवती से, तो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तुम उससे आसक्त हो जाओगे, लगाव हो जाएगा, बहुत अधिक प्रेम हो जाएगा, फिर तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्रेम किसके लिए नहीं होगा? कृष्ण के लिए नहीं होगा। तो इस प्रकार से कोई भी चीज जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती है, कृष्ण का विस्मरण कराती है, वो हमारे लिए क्या है? माया है। वह हमारी पत्नी हो सकती है, वह हमारे बच्चे हो सकते हैं, वह हमारा घर हो सकता है, वह हमारे कपड़े हो सकते हैं, वह हमारा मोबाइल हो सकता है, कोई भी चीज इस भौतिक जगत की। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो माया है ये बहुत प्रभावशाली है, और ये माया भगवान के सामने नहीं ठहरती। जो दुर्गा देवी है, माया का ये जगत में रूप क्या है? जो माया के जो अधिष्ठाता देवी है वो दुर्गा देवी है। और जब माता देवहूति को जब कपिल देव ने कहा कि मेरे माया का रूप क्या है, एक पुरुष के लिए माया एक स्त्री है, और एक स्त्री के लिए माया का शक्तिशाली जो बंधन है वो क्या है? पुरुष। ये भौतिक आकर्षण इस भौतिक जगत का जो हमें बांध के रखता है, तो इस प्रकार से वास्तव में हमारा जो हृदय है या हम बने हैं केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए, लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलते हुए कहते हैं के आमे केने आमा है जारे तापत रहे। पहले तो व्यक्ति को यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं, क्यों मैं इस भौतिक जगत में हूं, क्यों मुझे नाना प्रकार के जो तीन ताप हैं वो सता रहे हैं, कैसे मुझे इस भौतिक कष्ट आदि से मुक्त होना है। तो ये जानने के लिए व्यक्ति को एक आध्यात्मिक जो पुरुष है उसको अप्रोच करना चाहिए। तो इसलिए शास्त्र इस चीज पर जोर देते हैं कि हमें भगवत शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है। यदि हम किससे बचना चाहते हैं, माया के प्रभाव से बचना चाहते हैं, क्योंकि हम रक्षा अपनी रक्षा यदि करना चाहते हैं तो हमें जो असली रक्षक है उनके बारे में सोचना होगा, उनके बारे में जानना होगा। क्योंकि माया क्या करती है, एक तो हमें आकृष्ट कर लेती है और एक दबोच के रखती है लंबे समय तक। प्रेक्षपात्मिका माया और अक्षपात्मिका माया, माया के दो प्रकार है। पहले तो वो आकृष्ट कर लेती है, अपने पद से नीचे गिराती है, और दूसरा क्या है, बनाए रखती है, उसी स्थिति में हमें दबोच के बनाए रखती है। हाँ, जैसे हम उदाहरण सुनते हैं इंद्र का, इंद्र को क्या, इंद्र को सुअर बनना पड़ा। पहले तो उसको पोजीशन से गिरा दिया नीचे, राजपद था इंद्र का, पद था उसी से नीचे गिरना पड़ा और वो सुअर बना। और सुअर बना ठीक है, माया ने उनको गिरा दिया, लेकिन उतना ही नहीं, वो वापस उठ सकता है उस सिचुएशन से, लेकिन वो उसी में ही बना रहने के लिए माया इतना प्रभाव डालती है कि वो उससे बाहर नहीं आना चाहता। जब इंद्रपद खाली हो गया तो उस समय ब्रह्मा को जो मैनेज करना था अफेयर इस ब्रह्मांड के, तो उन्होंने कहा कि हे इंद्र चलो वापस चलो। इंद्र तो अपने सुवर पत्नी थी, सुवर इतने छोटे छोटे, पूरा एक क्रिकेट टीम था उनका, छोटे छोटे बच्चों का, हर मस्ती में है और वो बैठ उनके साथ मग्न है। और ब्रह्मा जी आते अपने हंस वाहन में और चतुर्मुख है, कहते इंद्र इंद्र, नाम याद था उसको, जाति स्मर, उसको कहते जाति स्मर, जो अपने पूर्व जन्म को याद रखता है उसको जाति स्मर कहते। तो उनको तो याद था कि मैं इंद्र हूं, इंद्र था, और फिर कहा कि हे इंद्र चलो आपके लिए वहां सिंहासन खाली है, इतनी सारी सेवाएं आपके लिए पड़ी है। कहते नहीं नहीं, वहां इतनी सुंदर मिस पिग, इतनी सुंदर पत्नी होगी क्या वहां। उन्होंने कहा अरे बाबा मिसेस पिग। तो उन्होंने कहा कि वहां तो उर्वशी है, रंबा है, मेनका है, इतनी सारे अप्सराएं हैं, इतनी सौंदर्यवान है। और फिर वो कहने लगा इतने छोटे छोटे तोतली बोलने बोलने वाले इतने जो मीठे मीठे बच्चे हैं, हाँ मेरा क्रिकेट टीम तैयार हो गया है, वहां कैसे मैं ये कर पाऊंगा। तो ब्रह्मा ने देखा कि ये आने के लिए तैयार नहीं है। तो माया पहले अट्रैक्ट करती है, पोजीशन से हमें गिरा देती है, और क्या करती है फिर उस स्थिति में गला दबोच के वहां बनाए रखती है। हाँ, इससे बाहर मत निकलो। कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो माया पहले से अट्रैक्ट करती है, अरे बेटा क्या करो, भागवतम क्लास में जाते हो, वहां सैटरडे प्रोग्राम में जाते हो, जब करते हो हरे कृष्ण मंत्र, उसको कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उससे वो छुड़वा देती है, और छुड़वा के ऐसी सिचुएशन में डालती है उसमें उसको उससे बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे कोई रजाई में है ठंड के दिनों में, हम बाहर ही नहीं आना चाहता है कि नहीं। तो वैसे ही ये जो माया, हाँ इंद्र को जब उसी सिचुएशन अच्छी लग रही थी, बल्कि सुवर का सिचुएशन कहाँ अच्छा है, ब्रह्मा देख पाता है। ब्रह्मा ने क्या किया, डंडा लिया है, मानेगा नहीं, सबसे पहले पत्नी को मार डालो, इतना गुस्सा होके भाग रहा है ब्रह्मा के ऊपर, क्या करेगा वो इतना। फिर देखा कि बच्चों में आ सकते हैं, सारे बच्चों को फिनिश कर दिया, कोई क्रिकेट टीम बची नहीं अभी अभी फिर कहा सब खत्म करके गला पकड़ के ले गए उनको इंद्र को। तो इस प्रकार से माया के ये दो प्रकार है, पहले तो हमें वो आकर्षित करती है, अपने पोजीशन से हमें नीचे गिराती है, और दूसरा क्या है, हमें सुवर के भांति जीवन जीने में हमें कहते कि नहीं यही बहुत अच्छा है, इससे बाहर मत निकलना। तो ये माया का प्रभाव है, ये प्रभावशाली माया है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि व्यक्ति माया के प्रभाव के कारण, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, पागल की तरह बातें करता है, जैसे किसी को भूत प्रेत पकड़ लेता है या कोई पागल हो जाता है, वो बात करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार पागल खाना क्या कहते हैं, पागल खाने में गए विजिट करने, प्राइम मिनिस्टर है, तो वहां जब गए तो वहां उस पागल व्यक्ति ने पूछा आप कौन है, आप सोच सकते हो पागल व्यक्ति कैसे कैसे हो गए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रधानमंत्री हूं। तो उन्होंने कहा मैं भी यहां आने से पहले यही कहता था। इस प्रकार से पागल व्यक्ति जो है नहीं उसको है मान लेता है, मतलब हम ये शरीर नहीं है लेकिन आपने आपको शरीर मान बैठे हैं, तो ये हमारा पागलपन है। ये कॉलेज में एक लड़के थे और उसके ऊपर भूत सवार हो गया था। वो क्या करते थे, हमेशा चू 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 चू, जो पंछी आवाज करते हैं ना, चू 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 चू, चिड़िया वगैरह ऐसे करते रहते थे, और हमेशा सोचते थे मैं बर्ड हूं, मैं क्या हूं, बर्ड हूं, और पूरा रोज चू चू करते 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 टेरेस में जाते थे, पांचवें छठे मंजिल में, किस लिए, उड़ने के लिए। एक दिन गई और जंप ही लगाने वाले थे, तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह ने उसको पकड़ा। तो मतलब ये पागलपन है, और हमारी जो शिक्षा है वो केवल यही दे रही है हमें, जिगर कराए गधा, ये भौतिक जो शिक्षा हमें मिल रही है वो दिन ब दिन हमें गधा बनाती जा रही है। जैसे एक बार हिजोली ने जय पताका महाराज एक प्रिंटिंग प्रेस में गए, वहां मंदिर का कुछ प्रिंटिंग का कुछ सामान दिया था प्रिंट करने के लिए, तो वहां एक स्कूल टीचर भी आया था, तो वहां एक क्वेश्चन पेपर वो स्कूल टीचर ये करने आया, लेने आया था, उसने भी अपना क्वेश्चन पेपर दिया था छापने के लिए। तो महाराज ने वैसे पेपर ले लिया और देखा क्या है, बंगला में था, बंगाली लैंग्वेज में, तो उसमें लिखा था तुम्हार परिचय की, आपका परिचय मतलब आप कौन हो एक प्रकार से। तो महाराज ने कहा यदि ये उत्तर दिया जाए कि मैं आत्मा हूं, अपना परिचय कि हम कौन है, आत्मा है, तो टीचर ने कहा 0 मार्क मिलेंगे। उसमें ये लिखना होगा चाहे मैं स्त्री हो, भारतीय हो, ये नो जो बॉडीली डेजिग्नेशन है, बॉडीली जो हमारी पहचान है उसको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से माया हमें, माया तो पिशाचिनी है, भक्तिराव ठाकुर ने कहा कि माया एक पिशाचिनी के समान है जो हमें झपट लेती है, पकड़ लेती है, और फिर हम पागल के भांति व्यवहार करने लगते हैं, पागल के भांति बड़बड़ाने लगते हैं। और वो बड़बड़ाना क्या है, जैसे विस्तार पर ट्रांसलेशन में आया है, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे ये मैं हूं और ये मेरा है, इन विचारों में लीन रहते। तो माया ने हमें को पकड़ा है, इसका अर्थ क्या है, इस अज्ञानता में हम हमारा जो जीवन है वो ये कर रहे हैं, डाल रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित वस्तु ये मेरी है, तो ये माया है। और वास्तव में हमें शरीर नहीं है, ना इस शरीर से संबंधित हमारी वस्तु ये हमारी है, क्योंकि हम मां के गर्भ से जन्म लेते हुए कोई सूट बूट टाई पहन के निकला था बाहर, नहीं, नग्न आया था, रोते हुए आया था, है कि नहीं। कोई बच्चा रोता है माँ के गर्भ से बाहर आता है और वो रोता नहीं, तो डॉक्टर कहते कि ये नॉर्मल नहीं है, उसको डॉक्टर पीटते। पीटते कुछ करते ताकि बच्चा रोए। तो इसलिए देखते कि ये जगत में व्यक्ति दुखदायी है, दुखमय सिचुएशन में है, और व्यक्ति केवल यही प्रयास करता है सुख की अभिलाषा के कारण। और वास्तव में ये जगत में सुख की अनुभूति करना केवल एक आशा है। आशा ही परमम दुखम नैराशम परमम सुखम, पिंगला वेशा श्रीमद् भागवत में शब्द कहती है कि व्यक्ति आशा के कारण हो, हाँ एक दिन आएगा हम होंगे कामयाब, एक दिन में इस भौतिक जगत में राजा बन के दिखूंगा, दिखाऊंगा सुखी होके दिखाऊंगा, इम्पॉसिबल है। हाँ, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, इतना बड़ा राजा जिसने पूरे वर्ल्ड को जीता था, विश्व विजेता, वो मरने से पहले उसने क्या किया था, अपने उन्होंने 3 आदेश दिए थे अपने मंत्रियों को। उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूंगा उस समय मेरे शरीर को धोते हुए कौन जाए, वैद्य डॉक्टर्स, जनरली घर के लोग ले जाते हैं या रिलेटिव्स वगैरह, उन्होंने कहा डॉक्टर्स होने चाहिए मेरे शव को ले जाने के लिए। और फिर दूसरा आदेश दिया कि जहां ये शव जाएगा स्मशान तक, वहां जितना मैंने हीरे मोती माने के आदि इकट्ठा किए हैं वो सारे रास्ते में डाले जा, उसके ऊपर ये लोग चले मेरे शव को लेकर। और इस शव को जब दफनाएंगे तो क्या करो, मेरे हाथों को बाहर रखो ऐसे खुले। तो अभी उनके जो मंत्री है, इतना बड़ा राजा का आज्ञा है, कोई बोल नहीं सकता, करना पड़ेगा। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति था जिन्होंने, उस मंत्री ने थोड़ा अपना शक्ति एकजुट किया, उनके पास जाके पूछा कि आप बताइए क्यों ये 3 चीजें आप चाहते हो। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, उस सिकंदर ने कहा कि मैं पूरे विश्व को ये शिक्षा देना चाहता हूं। क्या शिक्षा देना चाहता हूं कि क्यों डॉक्टर्स क्यों मेरे शरीर को ले जाए, आपके पास जो मर्जी फैसिलिटी हो, बेस्ट डॉक्टर्स हो, अपोलो हॉस्पिटल आपका खुद का हो या जो मर्जी हो, लेकिन आपको कोई इस विपद स्थिति से बचाने वाला नहीं है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा, मतलब ये कोई रक्षा नहीं कर सकता आपकी। और दूसरी चीज, सारे जगत को ये पता चले कि हर एक व्यक्ति दिन रात केवल धन अर्जन करने के लिए लगा हुआ है, भौतिक धन, आध्यात्मिक धन के लिए पागल नहीं है, भौतिक धन अर्जन करने के लिए व्यक्ति दिन रात गधे के भांति मेहनत कर रहा है। सारे विश्व को यह पता चले कि जितना मैंने धन अर्जन किया है पूरे विश्व में, वो मैं जाते समय अपने साथ नहीं ले जा रहा हूं, इवन एक छोटा सा टुकड़ा भी इस हीरे मोती माणिक के आदि का नहीं ले जा रहा हूं, इसलिए वो रोड में गिरा दो सारे, पता चले कि देखो मैं जा रहा हूं लेकिन फिर भी अपने साथ इन चीजों को लेके नहीं जा पा रहा हूं। और आखिरी समय में उन्होंने कहा, तीसरी चीज का उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम खाली आए थे, जनरली लोग कहते ना खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना पड़ेगा, लेकिन हमें खाली हाथ नहीं जाना है, हमें क्या ले जाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत में व्यक्ति अपने शरीर से आसक्त होने के कारण वो केवल सोचता है कि मेरी रक्षा कर सकते हैं कौन, देहापत्य कलत आदेशु असत सैनेशु, कि जो देह है, पत्नी बच्चे रिलेटिव्स आदि है, ये मेरी रक्षा करेंगे, मेरा बैंक बैलेंस मेरा रक्षा करेगा, मेरे मोबाइल में 1000 फोन नंबर है, गर्व होता है ना इतने कॉन्टेक्ट है, मैं छोटा व्यक्ति हूं, ये मेरी रक्षा करेंगे, मृत्यु के समय डायल भी नहीं कर पाओगे आप एक नंबर। हाँ, तो इसलिए है कि बहुत आवश्यक है कि ये जानना कि मेरी कोई रक्षक नहीं है इस जगत में, केवल रक्षक कौन है, कृष्ण है। तो ये चीज को व्यक्ति को बहुत गंभीरता से या गहराई से समझना होगा। तो हम अपने भौतिक प्रयासों से हम कभी भी अपनी जो रक्षा है वो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें यही प्रयास रखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परियुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। मैं उस व्यक्ति की रक्षा करता हूँ जो व्यक्ति क्या कर रहा है, अनन्य भाव से मेरे भगवत भजन में लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली माया से अपनी रक्षा करने का मतलब ही है हमें क्या करना होगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी ये संभव है। और इसलिए कृष्ण हमेशा इसी चीज पर जोर देते हैं। कृष्ण कहते सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज, सारे धर्मों का परित्याग करो और केवल एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, किसी और की नहीं। इवन इस भौतिक जगत में धन है, रिलेटिव्स है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, ये इनके इनके पास सामर्थ्य नहीं है हमारी रक्षा करने का। इसलिए नरसिम्ह देव को जब प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं बाल शनेह शरण पितरो नरसिम्ह, कि है नरसिम्ह देव कितने ही शक्तिशाली माता पिता क्यों ना हो, उनके पास धन सुविधा आदि क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने बालक की रक्षा नहीं कर सकते। राजा चित्रकेतु था, हाँ उनकी कितनी पत्नियां थी, 1 करोड़, वो वास्तव में करोड़पति था, है कि नहीं। और इतना समय बीतने के बाद उनको एक पुत्र हुआ और वो भी क्या हुआ, मर गया हर्ष शोक, लेकिन फिर भी वो रक्षा नहीं कर पाए। और नरसिम्हदेव को प्रहलाद कहते कि हे नरसिम्हदेव, यदि आपके पास बहुत बड़ा बोट क्यों ना हो और वो सागर में जा रहा है, कोई भरोसा नहीं है कि वो डूबेगा नहीं, तो केवल रक्षक कौन है, कृष्ण है। प्रहलाद महाराज ने भगवत भजन किया, उनको हर स्थिति में किसने रक्षा प्रदान की, नरसिम्हदेव ने। तो इसलिए ना हमें भौतिक किसी से रक्षा की अपनी कामना करनी है और ना देवताओं से भी हमें रक्षा की कामना करनी है। देवतागण भी हमें प्रोटेक्शन देने का सामर्थ्य नहीं रखते। जब रावण को मारा जा रहा था तो पार्वती ने कहा कि ये तो आपका भक्त है, ये भगवान राम जी मार रहे उसकी रक्षा करो। शिव जी ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं हो सकता, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण यदि किसको मारना चाहे तो उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, और कृष्ण यदि किसकी रक्षा करना चाहे तो उसको कोई मार नहीं सकता। हाँ, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उस समय पांडव 5 पांडव को ले जा रहे थे, तो कुंती महारानी को वचन दिया भगवान ने, कृष्ण का एक क्वालिटी ट्रूथफुलनेस, सत्यता, भक्ति रसामृत सिंध में वर्णन आता है कि कुंती महारानी को भगवान ने कहा कि मैं वचन देता हूं आपको कि मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को ले जा रहा हूं और ये सही सलामत वापस आ जाएंगे। महाभारत के युद्ध के बाद जिस जैसे पांडवों को ले गए थे उसी प्रकार से वापस लाके किन के पास छोड़ा, कुंती महारानी के पास। तो इस प्रकार से देवता गण भी अपना रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है उनके पास। भस्मासुर शिवजी के भक्त थे, कितने सारे, हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा ने इतने सारे वर दिए, वो रक्षा नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से शास्त्रों से हमें ये प्राप्त होता है, ये शिक्षा हमें मिलती है कि हमें किसी चीज की, किसी की रक्षा लेनी है या शरण ग्रहण करनी है तो किसकी शरण ग्रहण करें, हम कृष्ण की, भगवान की, वो असली प्रोटेक्टर है। इसलिए जब महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका वापस जा रहे थे और अपने रथ में बैठने वाले थे, सारे पांडवास वहां खड़े थे, तो जो उत्तरा है उसने देखा कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा है उसके गर्भ का विनाश करने के लिए, तो उत्तरा अपने महल से दौड़ते हुए कहती है पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगतपते नान्यं तदहं भयं भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परं। कि मृत्यु को देख रही हो सामने कि हे महायोगी हे कृष्ण आपके बिना ये जगत में हमारी मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, बल्कि उसके सामने पांच पांडव थे उनको पुकार सकते थे। तो इस प्रकार से शास्त्रों में हमें ये वर्णन मिलता है कि अल्टीमेटली हमें किसकी रक्षा ग्रहण करनी है, तो एक ही उपाय है भगवान के चरण कमलों का हमें आश्रय ग्रहण करना। तो इसलिए भगवान ने कहा मेरी माया बहुत प्रभावशाली है, उसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन मेरा आश्रय ग्रहण करते हो तो मुक्त हो सकते हो। जैसे बड़ा बड़ा बाढ़ आ जाती है, हाथी उसमें बह के चले जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ उसमें बह के चले जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा गांव में छोटे छोटे पेड़ हो कुछ होते हैं जो ना वो झुक जाते हैं, क्योंकि पानी का उन्होंने क्या लिया है, शेल्टर लिया है। वही पानी बहा के ले जाता है लेकिन उसका शेल्टर लेने से नहीं बह सकते। तो वही भगवान की ये जो भगवान क्या कर सकते हैं, हमें उनकी शेल्टर ग्रहण करने से उनकी शक्ति है उससे हम बच सकते हैं। तो माया के प्रभाव से बचने के लिए हमें तीन कवच धारण करने चाहिए। कितने कवच? तीन। यदि व्यक्ति माया से अपनी रक्षा करना चाहता है, अभी इस संसार में व्यक्ति परेशान रहता है तो नाना प्रकार के कवच अंगूठिया ताई धागे पूरा अलंकार धारण करते हैं अपने शरीर में, है कि नहीं? लेकिन वह सब रक्षा करते नहीं है। तो लेकिन तीन कवच है जो हर एक साधक को जो भगवान की ओर आगे बढ़ना चाहता है, माया से अपने आप रक्षा करना चाहता है, उसको धारण करनी चाहिए। तो ये पहला कवच क्या है? पहला कवच है वैष्णव कवच। क्या है? वैष्णव कवच। वैष्णव कवच का मतलब ही है किसी भक्त के आश्रय ग्रहण करना, भक्त के मार्गदर्शन में भगवत भक्ति में लगे रहना। इसलिए हम देखते हैं क्योंकि भक्त ही हमें किससे बचाने का सामर्थ्य रखते हैं, माया से। भक्ति सिद्धांत महाराज का उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति एक 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 लड़का युवा युवक ब्रह्मचारी हो गया, उनके मठ को उसने ज्वाइन किया। अभी कोई यंग लड़का ब्रह्मचारी बन जाता है, मठ को ज्वाइन करता है तो माता पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन उनके माता पिता आ रहे थे, माँ आ रही थी गुस्से से, तो किसी ने कहा कि गुरुदेव वो भक्त की माँ आ रही है। तो उन्होंने कहा माँ नहीं है, माया आ रही है उसको ले जाने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा छुपोगे? तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, वो बैठे थे किसी खटिया कॉट के ऊपर बैठे थे, उसमें बेडशीट वगैरह डाला था कि नीचे छुप जाना वो आ गए उनके पैर, आपका बच्चा है नहीं, कहाँ चला गया अब ढूंढ लो पूरे मंदिर में, आराम से बातें की, प्रसाद दिया और चले गए। तो ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम वैष्णव का आश्रय ग्रहण करते हैं तो माया से हम बच जाते हैं। वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद हरिदास ठाकुर आदि को मिलने जाते थे, और फिर वहां से वो छोटा गोपीनाथ का दर्शन करने और गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए जाते थे सुबह सुबह या थोड़ा सा इसी समय जाते होंगे। तो क्या हुआ, एक दिन चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे टोटा गोपीनाथ की ओर। तो वर्णन आता है एक दिन प्रभु यमेश्वर टोटा जायते सही काले देवदासी लागे लगायते। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और जब वो जा रहे थे तो उस समय जगन्नाथ टेम्पल के पास जो देवदासियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो भगवत सेवा में पूर्ण रूपे में समर्पित हैं, वो गान कर रही थी, गा रही थी भगवान की स्तुति, गुजरी रागिनी लैया सुमधुर स्वरे गीत गोविंद पद गाय जग मन हरे। तो वो क्या गा रहे थे? गीत गोविंद, जो जगन्नाथ जी को बहुत अधिक प्रिय है, ऐसे गीत गोविंद जो भगवान लीलाएं हैं उनको वो जोर जोर से गान कर रही थी, बहुत गुजर रागिनी में और मधुर स्वर से गा रही थी। अभी चैतन्य महाप्रभु ने उनका आवाज सुना उन स्त्रियों का जो गा रही थी भगवत स्तुति, और चैतन्य महाप्रभु भूल गए कि ये स्त्री गा रही है या पुरुष गा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? सन्यासी है। और ये ज्ञान और भूल गए और वहां से वापस दौड़े, जो गा रहा है उसका जाकर मैं आलिंगन करूंगा कि कितना सुमधुर गा रहा है भगवान के लिए। और लेकिन है कौन? सन्यासी। और भाग किस लिए रहा है? स्त्रियां जो गा रही है, स्त्रियों का आलिंगन करने के लिए भाग रहा है। धाइया जाए न प्रभु श्री अच्छे अल्प दूरे श्री गाय बलि गोविंद प्रभु न कैला कोले। और कांटे नहीं देख रहे हैं, पत्थर नहीं देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भाग रहे हैं, उनके पीछे उनका सर्वंट गोविंद भाग रहा है। और वो जाकर अभी वो श्री नजदीकी थी और जाके आलिंगन करने वाले थे, तो गोविंद ने क्या किया? चिल्लाया। गोविंद ने कहा श्री गाय, कौन गा रही है? श्री गा रही है। तो ये बिल्कुल तुरंत ही, जैसे आप तेज आपका गाड़ी ये होता है और आप देखते हैं स्पीड ब्रेकर और तुरंत क्या करते हो? ब्रेक दबाते हो। हाँ, उसी प्रकार से जैसे उन्होंने ये शब्द बोला, श्री नाम सुनी प्रभु रह बाह्य हैला पुनरपि सेई पते बाहुली चलिला। तो महाप्रभु ने जब सुना कि श्री गा रही है, वो बाह्य दशा में आ गए, तुरंत रुक गए, और बल्कि उन्होंने गोविंद दौड़ के उनको ऐसे आलिंगन किया, पकड़ा अपने इसमें डाल दिया उनको, नहीं तो क्या होने वाला था? उनका संन्यास भंग होने वाला था, खत्म होने वाले थे। प्रभु कहे गोविंद आजी राखिला जीवान श्री स्पर्श है लहामार है तमरन। मेरा आज मृत्यु होने वाला था कि मेरा जो संन्यास आश्रम है वो डूबने वाला था यदि मैं उन स्त्रियों का स्पर्श करता, लेकिन गोविंद आपने क्या किया है? आज मेरा जीवन रक्षा किया। ये ऋण शोधित्या में नारी मुतुमार। तो महाप्रभु ने कहा कि हे गोविंद, मैं इतना अधिक आपका ऋणी हूं कि ये जो ऋण है मैं कभी भी चुकता नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा कि तुम सदैव मेरे संग में रहो। हाँ, प्रभु कहे गोविंद मोर संगे राखी बा जहां तहां मोर रक्षा है सावधान है बा। कि आप जहां तहां मेरी रक्षा के लिए क्या रहो? सावधान रहो। तो इस प्रकार से एक भक्त को जो सबसे पहला कवच है अपने आध्यात्मिक जीवन में माया से बचने के लिए, हाँ, वो क्या धारण करना चाहिए? वैष्णव कवच, भक्तों का आश्रय, वैष्णवों का आश्रय, उसके बिना असंभव है माया से रक्षा। जो जड़ भरत है, अपने राज्य को त्याग दिया, मल के समान जंगल में गए, अकेले थे वहां, और किससे वो आकर्षित हो गए? हिरण से। कोई भक्त होता तो उनको बोलता, प्रभु जी आप हिरण से आकर्षित होते रहे हो, अभी अभी क्या करो, भगवान से आकर्षण बढ़ाओ। तो क्योंकि उन्होंने वैष्णव कवच को नहीं धारण किया था। और दूसरा क्या है? हरिनाम कवच। दूसरा कौन सा कवच है? हरिनाम कवच, क्योंकि वैष्णव के पास ही ये हरिनाम कवच है। वैष्णव के पास क्या है? हरिनाम कवच है। प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर को दो बार, एक तो हीरा नामक वेश्या उनको पतन करने के लिए आए, लेकिन वो किसमें फिक्स थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरि नाम कवच है वो हमें माया के विचारों से क्या करता है? रक्षा करता है। और ये हरि नाम देने का सामर्थ्य वैष्णव के पास है। वैष्णव उस कवच को धारण करते हैं, हरि नाम कवच को, और वो कवच दूसरों को क्या करते हैं? देते हैं। और जो शास्त्र वर्णन करते हैं तीसरा कवच क्या है माया से बचने के लिए, तीसरा कवच है प्रार्थना कवच। कौन सा कवच है? प्रार्थना कवच, क्योंकि प्रार्थना ये हमारी रक्षा करता है। श्रील प्रभुपाद लंदन गए थे 1976 में, आखिरी विजिट था लंदन का उनका, उसके बाद वो कभी विदेश नहीं गए। तो वहां राधा लंदनेश्वर के सामने प्रभुपाद खड़े थे और काफी देर हम ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। तो श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हो भगवान को? प्रभुपाद ने कहा, मैं भगवान को यही प्रार्थना कर रहा हूं कि हे कृष्णा आप मेरी माया से क्या करो, रक्षा करो। अभी प्रभुपाद को क्या आवश्यकता माया की रक्षा? लेकिन हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि जो महान वैष्णव है अपने आचरण से, आचार्य का मतलब ही है जो आचरण से शिक्षा प्रदान करता है। तो श्रील प्रभुपाद भगवान से प्रार्थना करते हैं और कई बार अपने डिसाइपल्स को कहते थे कि मेरे भक्तों की एक कमी है इस्कॉन की, क्या कि वो माया से नहीं डरते, माया को खरोचना चाहते हैं और फिर क्या हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत टफ है कि इसलिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना। जैसे गजेंद्र हाथी के बारे में हम सुनते हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए गया था जलाशय में, फैमिली के साथ नहा रहा था सरोवर में, तो उसी समय उसका पाव कौन पकड़ता है, मगरमच्छ, वो खींचता है, बाहर खींचता है, अंदर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा, तो माया क्या करती है, पकड़ लेती है हमें, खींचती है खींचती है खींचती है। तो लेकिन वो कैसे बचे वो गजेंद्र, गजेंद्र ने क्या किया, देखा हाँ कि उनके सामने कमल का फूल खिल रहा है, अपने सोंड से उस फूल को उन्होंने उठाया गजेंद्र हाथी ने और आकाश में फेंकते हुए कहा, नारायणम अखिल गिरो, भगवान नमस्ते, हे नारायण अखिल जगत के गुरु, आपको मैं क्या कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। तो इस प्रकार से उनकी इस प्रार्थना से तुरंत कृष्ण दौड़ के आते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान अपने गरुड़ वाहन को छोड़कर भागते हैं, वो सोचते हैं कि गरुड़ जल्दी नहीं पहुंचेगा, उससे जल्दी कृष्ण आके खड़े हो जाते हैं गजेंद्र के पास, बाद में गरुड़ पहुंचता। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में, भक्तिमय जीवन, जो हमें बहुत अपने हमारे पूर्व संचित सुकृति के कारण हमें प्राप्त हुआ है, भक्तों का संग भगवत भक्ति, तो ये हमारे हाथ से ना छूटे। माया क्या करती है, हमें पथभ्रष्ट करती है, हमारे पथ से हमें भगाती है, दूर ले जाती है, क्योंकि माया का दोष नहीं है, ये माया का ड्यूटी है। जैसे कस्टम डिपार्टमेंट होता है, दूसरे देश में आप जाते हो तो कस्टम, आप कोई चीज ले तो नहीं जा रहे हो उस वहां अनऑथराइज, उसके लिए कस्टम डिपार्टमेंट क्या पूरा स्कैन करता है। तो उसी प्रकार से इस जगत से आध्यात्मिक जाने जगत जाने के लिए माया कस्टम डिपार्टमेंट है, ये आपको क्या करती है, पूरा स्कैनिंग करती है कि इस भौतिक जगत में एंजॉय करने के लिए, भोग करने के लिए थोड़ा सा भी आकर्षण तो नहीं है, उसको आप वो चेक करती है। तो इस प्रकार से माया हमें क्या करती है, सदैव चेक करती है और नीचे खींचती है। लेकिन यदि सिंसियरली हम इन तीन कवचों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हम माया का जो प्रभाव है उससे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इस प्रकार से सार यही है कि हम यदि अपनी अल्टीमेट रक्षा चाहते हैं तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए, और माया जो दुर्लभ भगवत शक्ति है उससे हमें यदि मुक्त होना है तो इन तीन कवचों को धारण करना आवश्यक है। पहला कवच है वैष्णव कवच, भक्तों के एसोसिएशन में, भक्तों के मार्गदर्शन में भगवत भक्ति को नित्य रूपे नाम करते रहें, और दूसरा कवच क्या है, हरि नाम कवच, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरि नाम कवच जो हम डाले, और तीसरा कवच है प्रार्थना कवच,
चौथा कवच
तो इस प्रकार से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं।
हरे कृष्णा, लाउडली चांत करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।